الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم جماعت، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نماز سے متعلق گزشتہ کچھ جمعوں سے بیان کر رہے ہیں. آخری چند محفل ذکر میں نماز کے اسرار و رموز پہ بات ہوئی تھی. اسی سلسلے میں آج کا بیان بھی ہے، اور نماز کی حکمتیں جو اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہیں آج ان کو ہم پڑھیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں اللہ تعالی نے دو دو، تین تین اور چار چار کیوں کر کے بنائی ہیں؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ علمی نقطے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے. حواس خمسہ کہتے ہیں جو سینسز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے اس مادی جسمانی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. تو پھر ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے مختلف سینسز کے لیے اللہ رب العزت نے پانچ نمازیں عطا کی، تاکہ ان نمازوں کی رکعتوں کے متعین کرنے سے ہم ان کا شکر ادا کریں. پہلی سینس سمیل کی ہے، اسے قوت شامہ کہا جاتا ہے. اس سے دو کام لیے جاتے ہیں، ایک خوشبو کا اور دوسرا بدبو کا. تو دو سینسز کیونکہ اس سے متعلق تھیں، یعنی کہ دو کام اس سے متعلق تھے، لہذا فجر کی دو رکعتیں فرض ہوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی. دوسری سینس جو ہوتی ہے وہ ٹچ کی ہے، اس کو قوت لامسہ کہتے ہیں. مس کرنے کو جو ہے قوت لامسہ ہوتی ہے، اور اس سے چار چیزوں کا پتہ چلتا ہے. سردی کا پتہ چلتا ہے، گرمی کا پتہ چلتا ہے، کسی چیز کے نرم ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کسی چیز کی سختی کا پتہ چلتا ہے. انہی چیزوں سے ہمیں زندگی گزارنے کے مزے بھی آتے ہیں، تو اب ان کی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے تھی. تو یہ جو چار چار والی رکعتیں فرض ہوئیں، ان سے مثلا ظہر کی نماز چار رکعت فرض، اس کا شکر ادا ہوتا ہے. انسان دن کے وقت کام کاج کرتا ہے، سردی گرمی سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، چیزوں کو پکڑتا ہے، تو اس کو یہ کام کا جو وقت ہوتا ہے اس کا تعلق ظہر سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور سینس ہے جسے قوت ذائقہ کہا جاتا ہے، ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، اور اس میں چار قسم کے ٹیسٹ انسان محسوس کرتا ہے. ایک میٹھا، دوسرا کڑوا، تیسرا نمکین، اور چوتھا ترش ساور. تو یہ جو چار جو ہے نعمتیں انسان کو ملی، تو ان کا شکر انسان असर की चार रकतें पढ़ता है और दिन भर जो खाता है पीता है, इशा की नमाज में भी जो है उस वक्त तक इंसान खाता पीता रहता है, तो इस नेमत से उसका शुक्र अदा किया जा सकता है। अगली कुव्वत बासरा है, यानी विजन की जो इंसान को नेमत अल्लाह ने अता की। अल्लाह की शान आंख जो है सामने देखती है, दाएं देख सकती है, बाएं देख सकती है, पीछे नहीं देख सकती। तो इसके अंदर तीन सिमतें हैं आंखों की, तीन तरफ हम निगाह घुमा सकते हैं। अल्लाह ने मगरब की तीन रकतें फर्ज फरमाई कि इस नेमत का शुक्र अदा करो, तुम सारा दिन जब रोशनी थी तुम देखते रहे, रात का अंधेरा छाने लगा है, तुम्हें एहसास होता होगा कि ये नेमत थी अल्लाह की तरफ से, और जिसकी जिंदगी में घटा टोप अंधेरा हो और जो देखने वाला हो उसका फर्क, दिन और रात का फर्क जब पैदा होता है इंसान को उसका एहसास होता है। कुर्बान जाए अल्लाह ताला पर, जिस परवरदिगार ने हमारे ऊपर एहसान अजीम किया, नेमतें भी अता फरमाई और नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका भी बताया, और साथ ही साथ ये भी समझा दिया कि तुम शुक्र गुजारी करोगे हम नेमतों को बढ़ाते चले जाएंगे। और शुक्र गुजारी क्या है कि इन नेमतों का सही इस्तेमाल करो मेरे भाइयों। निगाहें भटकती फिरें, हर चीज को खाना चखना, हलाल हराम का ख्याल न रखना, हर चीज को छू लेना, न सोचना कि ये जायज है नाजायज है जी, हर बात को सुनना तो भाई ये बात जायज नहीं है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करे, और शुक्रगुजारी इन आज़ा के सही इस्तेमाल करने से है। अल्लाह ताला अगर हमें ये नमाज अता न करके तो हमें इसकी शुक्रगुजारी करने का मौका ही ना मिल सकता। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें नमाज जैसी नेमत अता फरमाई है जिसकी वजह से हम जो है शुक्रगुजारी कर लेते हैं। अगला इल्मी नुक्ता, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया। अब ना तो मिट्टी में प्रवास करने की सलाहियत है और ना ही इंसान को अल्लाह ने पर अता किए हैं कि वो परों के साथ जैसे परिंदे उड़ते हैं ऐसे ये उड़े और प्रवास करे। लेकिन परवरदिगार आलम चाहते हैं कि इंसान को अगर जिस्मानी प्रवास नहीं मिली तो रूहानी प्रवास तो नसीब होनी चाहिए। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है ताकि ये आलम मलकूत के अनवार व बरकात से झोलियां भर सके, तो इसलिए पांच नमाजें फर्ज फरमा दी जिनसे फरिश्तों के साथ इबादत वाली मुनासबत हासिल हो गई। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने दो दो, तीन तीन और चार चार पर अता किए हैं जिनसे वो प्रवास करते हैं। इरशाद बारी ताला है, क्या इलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा। फरमाया मलाइका को रसूल बनाया और दो दो, तीन तीन, चार चार पर अता किए जिनसे वो प्रवास करते हैं। इंसान मिट्टी का बना हुआ है तो ये अब जब नमाज पढ़ता है कभी दो दो रकातें, कभी तीन और कभी चार चार रकातें पढ़ता है, रूहानी परवाज नसीब होती है। यह है ये नमाज की सुभान अल्लाह, इससे उसको परवाज मिल गई, फरिश्तों से उससे मुशाबियत मिली। अब एक और सवाल है कि नमाज के अंदर सात फराइज हैं, नमाज के अंदर वाजिबात भी हैं, सुनन भी हैं, लेकिन फराइज जो हैं वो सात है। ये सात फराइज क्यों हैं? तालिब इल्म के जहन में ये सवाल आ सकता है। अव्वल तो ये सवाल आना भी नहीं चाहिए, है ना? हमारा क्या मजाल क्या हम पूछे कि सात क्यों है यार, है जी? लेकिन तालिब इल्म होने की हैसियत से ये सवाल करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए बात, वरना ये हिकमतें ढूंढने की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, जरूरत ही नहीं होती। अल्लाह का हुक्म क्या काफी नहीं है कि जो है नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलात, बस ये बात काफी है। लेकिन बहरहाल हिकमत मालूम हो तो फिर और भी मजा बढ़ जाता है माशाल्लाह। तो ये सात फराइज क्यों है, इल्मी नुक्ता जवाब इसका, फरिश्ते अपनी इबादात के इतबार से सात जमातों में तकसीम किए जा सकते हैं। एक अर्श इलाही और बैतुल मामूर का तवाफ करते हुए तस्बीह तमहीद और तकबीर कहने वाले फरिश्तों का ग्रुप। दूसरा, अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए इस्तग़फार करने वाले फरिश्ते बनाए हैं जो मोमिनों के लिए जो है इस्तग़फार करते रहते हैं। जो नेक लोग होते हैं उनकी दुआओं पर वो आमीन कहते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं और उनके लिए मगफिरत मांगते हैं अल्लाह ताला। तो एक वो ग्रुप है तौबा तायब करने वाले, है ना? तीसरा, फरिश्तों का वो ग्रुप जो कुरान मजीद पढ़ने वालों का कुरान सुनना या मजालिसे जिक्र और वाज़ और नसीहत में शामिल होने वाला ग्रुप है। जहाँ कहीं भी कोई अल्लाह की बात हो रही होती है, कुरान पढ़ा जा रहा होता है, वहाँ फरिश्ते जमा हो जाते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं और सुनते हैं और खुश होते हैं कि अल्लाह की तस्बीह की जा रही है, अल्लाह की बातें बताई जा रही है। तो ये भी एक फरिश्तों का ग्रुप है। इसी तरह चौथा फरिश्तों का वो ग्रुप है जो कयाम की हालत में इबादत करता है। जब से बने हैं क़यामत तक हमेशा खड़े रहेंगे, अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे। इनको रुकू सजदा नसीब नहीं हुआ, फकत क़याम नसीब हुआ है। लेकिन ऐसे भी हैं जो हालत रुकू में इबादत करते हैं। ये पांचवा ग्रोह हो गया फरिश्तों का। छठा, वो फरिश्तों का ग्रोह जो हर वक्त सजदे में पड़े रहते हैं। किताबों में लिखा ये फरिश्ते जो सजदे में पड़े रहते हैं, इनके अंदर खशियत इलाही की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से खड़ 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 की आवाज आती है। यानी इनकी जैसे हड्डियां कांपती हैं खौफ के मारे अल्लाह को सजदा करते हुए, ऐसी इबादत कर रहे होते हैं कि इनका जिस्म कांप रहा होता है। जैसे कहते हैं ना, खौफ से दांत बजने लग जाना, या सर्दी से भी दांत बजते हैं, टक 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 की आवाज आने लग जाती है। ऐसे सजदे में ये पड़ते हैं, खौफ इन पे ऐसा तारी होता है, इनमें से आवाज आती है। तो सजदे की हालत वाले फरिश्ते हो गए नंबर छह। और सातवां वो ग्रोह जो कादे में बैठे हुए हैं, जैसे अत्तहियात में हम बैठते हैं, इसी तरह ये फरिश्ते जब से बने या क़यामत तक यूं कादे में बैठे हुए अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने नमाज में सात ये फर्ज जो है कर दिए गए ताकि मलाइका की इबादत के साथ मुनासबत हो जाए। उन ग्रोहों को एक एक इबादत मिली। इंसान अशरफुल मखलूक था, इसको अल्लाह ने सारी सातों ये इबादतें नमाज में कहा। नमाज पढ़नी चाहिए ना, है ना? नमाज की कितनी पाबंदी करनी चाहिए, कितना बड़ा ये इनाम है जो अल्लाह ताला दे रहे हैं। इसी तरह एक और इल्मी नुक्ता जिसकी जो बताता है कि सात फराइज नमाज के क्यों हैं, वो ये है कि इंसान जाहिरी तौर पर भी सात ऑर्गन से बना हुआ है, आजा है, और इन्हीं से उसको राहत भी मिलती है, लज्जत भी मिलती है, मजा भी आता है। और इनमें से एक हाथ, दूसरा पांव, तीसरी आंख, चौथा जुबान, पांचवा नाक, छठा शर्मगाह और सातवां बंदे का दिमाग। ये सात ऐसी चीजें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अता किया, नमाज के अंदर भी ये सात नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका दिया। अब जिस तरह जाहरी आजा में आपस का कनेक्शन होना जरूरी, अगर आंख में दर्द हो तो सारे जिस्म में तकलीफ, सारा जिस्म बेकार हो जाता है, इसी तरह इन फराइज में भी आपस का इत्तफाल है, कनेक्शन है। एक फर्ज छूटने से सारी नमाज बातल हो जाती है, फर्ज नहीं छोड़ सकते, इनका भी आपस में ताल्लुक है। अब तीसरा नुक्ता इल्मी जो सात फराइज से मुतालिक है वो है कि इंसान सात चीजों से मिलकर बना है। कौन सी चीजें हैं? एक गोश्त, दूसरा पट्टे, तीसरे रगें, चौथा खून, पांचवा हड्डियां, छठा मगज और सातवां जिल्द, इंसान की स्किन। तो लिहाजा इन तमाम आजाद के शुक्रिया के तौर पर नमाज में सात फर्ज मुकर्रर कर दिए। अच्छा, अगर नमाज में पढ़ते होते कभी किसी ने आज की जिंदगी में ये शुक्र पढ़ा, अल्लाह तूने मुझे जिल्द अता की है, ये स्किन मुझे दी है, अल्लाह आपने बड़ी मेहरबानी की है, अल्लाह ताला अल्लाह आपने मेरे अंदर हड्डियां बनाई हुई है, कभी किसी ने इसको ये शुक्र अदा किया? ख्याल ही नहीं आता। अल्लाह की नेमतें इतनी है कि इंसान उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत दीन अता किया है कि जिस दीन की वजह से हम अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते फिरते हैं और हमारी जान सलामत है, हमारा ईमान सलामत है। चौथा इल्मी नुक्ता कि जहन्नम के सात दरवाजे भी हैं। इरशाद बारी ताला है, लहा सब अबवाब, जहन्नम के सात दरवाजे हैं। अल्लाह ताला ने नमाज में सात फर्ज मुकर्रर फरमाए ताकि नमाजी आदमी जहन्नम के सातों दरवाजों से बच जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा एहसान, तेरा शुक्र अल्लाह। ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम किसी तरह जन्नत में चले जाए। इस्लाम ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ है कि अल्लाह ताला ने हमें जैसे पक्का फैसला कर दिया कि बस किसी तरह इनको जन्नत में पहुंचा दो और बचा लो इनको। अब एक और सवाल आता है कि दिन रात की नमाजों में 17 रकते फर्ज बनती है, अगर सुबह से गिनती शुरू करेंगे 2 फिर 4 फिर 4 तो इस तरीके से ये 17 रकते बन जाती हैं जो फर्ज हुई। इल्मी नुक्ता कि भी ये क्यों ऐसे, मेराज की रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17 नेमतें मिली। कौन कौन सी मिली? मस्जिद अक्सा को देखा, पैगंबरों की अमामत की, और 3 से 9 तक यानी के 7 आसमानों की सैर की, पहले 2 चीजें और फिर उसके बाद 7 आसमान, तो 7 जमा हो गया, 9 हो गया ना टोटल। 10वां मलाइका मुकर्रबीन से मुलाकात हुई। 11वां जहन्नम की सैर की, जहन्नम के हालात देखे और गवाही दी फिर आकर, और 12वां जन्नत की सैर की और जन्नत के हालात उम्मत को बताए। 13वां लोहे कलम को देखा। 14 अर्श की सैर की। 15 कुर्सी की सैर की। और 16वां सिदरतुल मुंतहा की सैर की। और 17वां अपने प्यारे रब का दीदार किया, अल्लाह सोने का दीदार। तो लिहाजा उम्मत मोहम्मदी पर दिन रात में 17 रकते फर्ज फरमाई ताकि मोमन को इनके जरिए से रूहानी मेराज नसीब हो जाए। मेराज की बातें थी ना, अभी मेराज गुजरी, शबे मेराज है, तो ये मेराज नसीब हुई। एक और इल्मी नुक्ता, दिन रात की नमाजों में 17 रकते फर्ज हैं और हर रकत के 7 फराइज हैं। ये मिलकर 24 हो गए। हर जो है रकत के अंदर 7 फराइज और टोटल कितने 17 रकते, जमा किया तो कितने बन गए 24। बस जो इंसान इन्हें अच्छी तरह अदा करेगा अल्लाह ताला इसके 24 घंटों के गुनाहों को माफ फरमा देंगे। ये नमाजों का निजाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का तर्जमा के पांचों नमाजें कफारा हैं सारी जिंदगी के दरमियान वक्त का। अस्सलातुल खम्सु कफारतु लिमा बैनहुम बैनहुन्ना। अब अगला सवाल, नमाज में किबला की तरफ तवज्जो क्यों जरूरी है जी? तालिबे इल्म के जहन में सवाल आ सकता है, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, ये किबला की तरफ मुंह क्यों करना जरूरी है जी? तो इसका इल्मी नुक्ता, नमाज में किबला की तरफ तवज्जो करने से मुसलमानों को मरकजियत और वहदत नसीब हुई है। एक पॉइंट मिल गया, दुनिया में जहां गई है सारे उसी एक तरफ हो गए। अगर चारों तरफ नमाज पढ़ने की इजाजत होती तो हर शख्स का रुख जुदा जुदा होता, ना हम जमात कर सकते, लड़ते ही रहते ना आपस में, ना इमाम होता, ना उम्मत में मरकजियत होती, बल्कि हर तरफ इंतशार ही इंतशार होता। अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया किबला का रुख। अगर बिलफर्ज किबला की सिमत ही ना मुतय्यन की जाती तो नमाजी के लिए यकसुई से नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता। इंसान जो है तजब्जब का शिकार रहता, जज्बे मोहब्बत इस बात का तकाजा करता कि या तो महबूब सामने हो या महबूब की कोई निशानी सामने हो ताकि दिल को सुकून मिले। अब कभी वो इधर करके पड़ता, फिर कभी उधर हो जाता, कभी पीछे हो जाता, कभी दाएं कभी बाएं, अजीब उसके ऊपर कैफियत होती कि मैं क्या करूं। है जी, अल्लाह ने एक सिफ्त दे दी, है जी। और शायर कहता है, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। वाले सजदे तड़प रहे हैं अल्लाह, है जी। मोमिन के दिल में अल्लाह का दीदार का बड़ा शौक होता है, है जी, अल्लाह से मुलाकात हो जाए, मुलाकात हो और फिर हम सजदे करें अल्लाह ताला को, अल्लाह के कदमों पे गिर जाएं, है जी। जिसको इतना एहसान है भाई, क्यों ना गिरे उसके कदमों पे, है। तो ये सजदे करने को जी चाहता है। तो काबातुल्ला दर हकीकत बैतुल्ला है, शियारुल्ला है, अल्लाह की निशानी है, लिहाजा उसकी तरफ मुंह करते हैं। है, है। और इस तरीके से बंदगी के आदाब बजा लाते हैं। सजदा करने वाला अल्लाह ताला के कदमों पर सजदा करता है, हदीस पाक का मफहूम है। इल्मी नुक्ता एक और, के किबरियाई सिर्फ अल्लाह ताला को ही सजती है, अल्लाह बड़े हैं। अल किबरियाउ रिदाई, कि किबरियाई जो है वो मेरी चादर है, अल्लाह फरमाते हैं, कवरिंग है। तो अल्लाह चाहते हैं कि मखलूक के दिल से तकबर निकल जाए और आजीज आ जाए। फरिश्तों ने जब तखलीक आदम के वक्त अपने आप को आला समझा और कहा कि अल्लाह हम तो हैं तेरी तस्बीह करने वाले, आप क्यों आदम को खलीफा बनाते हैं, तो अल्लाह ताला ने अना तोड़ने के लिए हुक्म फरमाया कि आप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। जिसने सजदा न किया तो हमेशा के लिए क्या हुआ, मर्दूद हो गया ना, अल्लाह नाराज हो गया, शैतान रजीम हो गया। अब आदम के दिल में भी ख्याल पैदा हो सकता था कि मैं भी तो मस्जूद मलाइका हूँ, फरिश्तों ने मुझे सजदा किया हुआ है, इसकी भी तो अनाह तोड़नी थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू अब मिट्टी पत्थर के घर की तरफ सजदा कर, जी, ताकि तेरी अनाव भी टूटे। अगर कोई अब मूर्ति गोल्ड की बना के पूजा करे, वो तो गोल्डन मूर्ति हुई ना फिर, है जी, उसमें भी तो वो बढ़ियापन वाली बात आ गई। और ये क्या कि मिट्टी और पत्थर का बना हुआ घर उसकी तरफ मुंह करके अब जो है सज्जे कर रहे हैं। तो भाई एक बात ध्यान में रखो, अगर किसी बंदे ने ये नियत कर ली कि मैं काबातुल्ला की इबादत करता हूं, है जी, तो फिर फतवा ये है कि वो काफिर हो गया। इबादत हम अल्लाह की करते हैं, जिहद इलल काबा करते हैं, काबा की इबादत नहीं करते। अभी पिछले दिनों काबा की तामीरात हुई और जो पत्थर काबतुल्लाह के अंदर बसीदा हो गए थे, घिस गए थे, खराब हो गए थे, सऊदी हुकूमत ने उनको निकाल के उनकी जगह पर नए पत्थर रख दिए। अब वो पत्थर तो निकाल के अल्लाह जाने वो कहां ले गए, पूरी दुनिया के किसी मुसलमान ने भी नहीं पूछा कि भाई आप उन पत्थरों को कहां ले गए, हम सारी जिंदगी इबादत करते रहे। क्यों? तो मुसलमानों को उन पत्थरों से कोई सरोकार नहीं था, वो तो जहर थी एक फकत, और उसकी तरफ मुंह करके हम इबादत करते थे, ना कि हम उन पत्थरों की इबादत करते थे। अब एक और सवाल पैदा होता है कि पहले बैतुल मुकद्दस था, फिर सजदे के लिए बैतुल्ला बना दिया गया, तो ऐसा क्यों हुआ? अब ये इल्मी नुक्ता का जवाब, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्तों के जरिए बैतुल्लाह को तामीर करवाया। पहली तामीरात फरिश्तों से हुई। दूसरी तामीर जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने पुराने निशानात पर जो है नए सिरे से इमारत बनाई, उन जगहों पर जहां फरिश्तों ने बनाया था उसके ऊपर छोटी छोटी दीवारें देकर जो है ये बैतुल्लाह बना दिया। फिर जब तूफान नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया और इमारत टूट गई, तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी इसकी तामीर की। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की अस्तर नौ तामीर की। जब बनी इसराइल के साथ अल्लाह ताला ने खुसूसी नेमतों का वादा फरमाया, जहां उनमें 10,000 अंबिया को भेजा खाने के लिए मन व थलवा उतारा, वहां उनके लिए खास किबला अता किया, चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को बनाया। बनी इसराइल के अंबिया उसी तरह रुख करके इबादत किया कर। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने भी कुछ अर्सा बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की, लेकिन आपकी दिली तमन्ना थी कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म हो जाए। राज़े अल्लाह ताला ने आपकी मुराद पूरी फरमाई, बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क़िबलतैन होने का शर्फ नसीब हुआ, दोनों तरफ उन्होंने जो है रुख करके नमाज पढ़ी। बैतुल मुकद्दस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, है जी, जबकि बैतुल्लाह को 5 पैगंबरों ने, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। मालूम हुआ कि दुनिया में जो सादतें मुख्तलिफ अंबिया को जुज़वी तौर पर मिली, वो सब की सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली तौर पर मिली। इसलिए जो है बैतुल्लाह की तरफ रुख करना और साथ ही साथ बैतुल मुकद्दस की तरफ भी इबादत करने का मौका मिल गया, दोनों तरफ से मिली, क़िबला तैन का शर्फ हासिल हो गया। अब एक और सवाल है कि नमाज शुरू करते हैं तो तकबीर तहरीमा से क्यों शुरू करते हैं? अल्लाह अकबर कहते हैं, तकबीर तहरीमा कहते हैं, हाथ ऊपर करना कानों की लौ तक, है जी, तो यहां से क्यों शुरू करते हैं? तो भाई पहली बात तो ये है, जब भी कोई बादशाह आता है तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट होती है। पहले जमाने में ये अनाउंसमेंट होती थी कि जब मजमा इकट्ठा हो जाता था और बादशाह आता था तो एक आदमी ऊंची आवाज में कहता था जी बाद अब बामुल हजा होशियार और इस किस्म के अल्फाज कहते थे। आजकल के दौर में सायरन शायरन बजाते हैं, बादशाह जहाज है या कोई बड़ा पर्सनैलिटी गुजरती है उसके आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, वो सायरन शायरन बजाती हैं, लाइटें देती हैं, लोगों को इतला हो जाती है कि कोई बड़ी शख्सियत जो है वो यहाँ से गुजर रही है या आ रही है, तो लोग मुअद्दब हो जाते हैं और बादशाह का इस्तकबाल करते हैं, उस तरफ जो है तवज्जो कर लेते हैं। तो नमाज में मोमिनीन के सामने जाते इलाही खुद जलवा गर होती है। तो नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत कर रहे होते हैं, रियाजा शुरू होने से पहले सब नमाजी सफे बनाकर सलीके के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर इमाम बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर के अल्फाज कहता है ताकि अजमत इलाही का इस्तेहजार हो जाए, सबको पता चले कि बड़े अल्लाह अल्लाह अकबर, और मुक्तदी भी उसके पीछे अल्लाह अकबर के अल्फाज कहकर बाअदब होकर गुलामों की तरह हाथों को बांध कर निगाहों को झुकाकर दिल में अजमत इलाही का ख्याल जमा कर चेहरे पर खौफ के आसार जो है बिठाकर और जुबान से सुभानकल्लाहुम्मा के अल्फाज से शहनशाह आलम हकीकी की तारीफें करने में लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये पैदा हुआ कि तकबीर के वक्त हाथ कानों तक क्यों उठाते हैं जी, ये भी सवाल है इल्मी नुक्ता कि हाथ कानों की लौ तक इसलिए बुलंद करते हैं ताकि कॉल और फेल के दरमियान मुताबकत हो जाए। कॉल क्या है? अल्लाह अकबर, तो फेल भी वैसे ही होना चाहिए ना, है जी। तो जुबान से अल्लाह अकबर कहा यानी अल्लाह की शान का इजहार किया और दोनों हाथ कानों की लौ तक उठाकर इसके आली मकान होने का इशारा किया, अल्लाह अकबर करके हाथ ऊपर उठा कर किया, बस हमारा परवरदिगार बड़ा आली शान और आली मकान वाला है, ये हम बता रहे होते हैं। दूसरा नुक्ता कि इंसान किसी चीज से ला इल्मी जाहिर करने के लिए कानों को हाथ लगाता है, बंदे को अगर किसी से पता ना कर दी तो बता है ऐसे करता ना, अल्लाह तो हाथ कानों को लगाते हैं। जब हजरत आयशा सिद्दीका का वाकया हुआ है जी, वाकया उफक कहते हैं इसको, तो वो जब हुआ तो सैयदा बीबी जैनब थी, बीबी सैयदा जैनब से जब अल्लाह के नबी से उसने पूछा कि आपको इसके बारे में पता है, तो उन्होंने क्या किया, अपने कान और जुबान और यूं करके कहा कि भाई मैं ऐसी बात करूं जिसका मुझे इलम ही ना हो, है जी मैं क्यों कहूं, तो फौरन कानों का हाल लगाया, तो ना 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 मुझे नहीं पता मैं क्यों बात भी कहूं। तो मालूम हुआ कि ला इल्मी का इकरार है जी इस तरह से किया जाता है। तो अब अल्लाह ताला की अजमतें हमारे सोच गुमान से भी बड़ा था, हम तो कह रहे हैं अल्लाह अकबर, क्या हमें पता है अल्लाह कितने बड़े, तो साथ ही कानों को हाथ लगा दे, अल्लाह तू ही जानता है तू कितना बड़ा है, ला इल्मी का इजहार कर या अल्लाह तू ही जानता है, जुबान से तो हम कह रहे हैं अल्लाह तू बहुत बड़ा, लेकिन भाई हकीकत अल्लाह तू ही जानता है। अच्छा अब तीसरा नुक्ता कि जब कोई बंदा डूबने लगता है तो वो क्या करता है, अपना हाथ उठाता है। मोमन हुब्बे दुनिया के दरिया में डूब रहा था, अल्लाह ताला के हजूर पहुंचा तो हाथ उठाए ताकि परवरदिगार उसका मददगार बन जाए, अपने बचाव के लिए ऐसे करते हैं हाथ आगे बढ़ाते हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब हुब्बे दुनिया के दरिया से बहिफाजत किनारे लगा दिया अल्लाह ने, हाथ उठाया उसने, अल्लाह अकबर, दुनिया पीछे रह गई और ये नमाज में खड़ा हो गया अल्लाह के, है जी। तो दुनिया से छुटकारा हासिल हुआ इसको, इसने हाथ उठाया। चौथा भाई हाथ जो है ये ताकत के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज, ये एक सिंबल है ताकत के लिए। फला के हाथ मजबूत करो, क्या मतलब है? उर्दू में कहा जाता है कि भाई इसको स्ट्रेंथ दो। फिर इसी तरह भाई सारे मामले के पीछे फलाह का हाथ नजर आता है, क्या मतलब है? उसकी कुव्वत, उसकी ताकत नजर आती है। इस आदमी के हाथ बड़े लंबे हैं, यानी बड़ी पहुंच, बड़ी ताकत वाला। मैं उस शख्स पर मजबूत हाथ का शिकंजा कस दूंगा, ये बोला जाता है उर्दू में है। तो भाई क्या मतलब कि मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करूंगा। हाथों में हाथ दो, फलाह का साथ दो, अच्छा भी कहा जाता है जी। तो ये हाथ, इसका हाथ से आहिनी हाथों से चोरों को जकड़ लिया है जी, ये अल्फाज बोले जाते हैं। फला शख्स फिर हाथ दिखा गया, ये भी कहा जाता है ना। आपको इस काम में हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था, है ना। ऐसे नहीं हाथ डालना था, ताकत ही डालते। फला शख्स बड़ा कारीगर है, इसका हाथ बहुत साफ है, अल्फाज बोले जाते हैं। जो लोग मेरे साथ मुत्तफिक है वो हाथ खड़े करें, हैंड रेस करो जी, है ना, माशाल्लाह। तो ये हाथ भी इस तरह रेस किया जाता है। हम तो फला को हाथ नहीं लगाएंगे, ताकतवर है। हम फला काम से आजिज हैं, भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हम ऐसे कहते हैं, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज की इब्तिदा में ही बंदों के हाथ खड़े करवा दिए, ताकि पता चल जाए कि बंदे ने बेकसी के हाथ खड़ा करके अपनी आजिज का इजहार कर दिया। आप कहेंगे भाई ये तो उर्दू की सारी मिसालें दी हैं, है जी, लेकिन अंग्रेजी वाले भी तो कहते हैं हैंड्स अप, क्या मतलब होता है? हाँ जी, गिवअप कर दो बस, तो हाथ खड़े करा दिए है। तो ये यानी कि अक्सर जबानों में यह हाथ का ताल्लुक जो है कुत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कुत छीनने के लिए जो है हाथों को खड़ा करा दिया जाता है। और इससे बंदे को का परवरदिगार के गलबे को तस्लीम करके हाथ खड़े करके जो है, और जुबान से अल्लाह अकबर कह के इशारा कर देना कि बस तो अब हाथ खड़े कर दिए भाई, बस है जी। तो ये एक नुकता है। अगला बात, नमाज में हाथ बांध कर खड़े होने में क्या हिकमत है? वक्त थोड़ा है, मजमून लंबा है हमारा। अब हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं हम, है जी। इल्मी नुकता कि अदालत में जज के सामने जब मुजरम को पेश किया जाए, क्या किया जाता है? हथकड़ियां के हाथ बांधे होते हैं। मोमन नमाज की हालत में अपने आप को गुनाहगार मुजरम की तरह शहनशाह हकीकी के सामने हाथ बांध कर खड़ा होता है, और यही अदब से ज्यादा करीब है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि नमाज के शुरू में सना क्यों पढ़ी जाती है? जब किसी शख्स को दरबारे शाही में हाजिरी की इजाजत मिल जाए, तो वो गुफ्तगू की इब्तिदा में चंद जो है तारीफी कलमात बोलता है, जैसे मोमन नमाज में जब पहुंचता है तो कहते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा, या अल्लाह तेरी पाकी बयान करता हूं कि तू हर ऐब से पाक है, हर बुराई से दूर है। हम दिखा जितनी तारीफें, जितनी तारीफ की बातें हैं, और जितने भी काबिले मदा अमूर हैं, सब तेरे लिए हैं, ऐसे अल्फाज बोल रहा होता है। व तबारक इस्मुका, तेरा नाम बाबरकत है जी। ऐसा बाबरकत के जिस चीज पर तेरा नाम ले लिया जाए वो भी बाबरकत हो जाए। आला जद्दू का, और तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी अजमत सबसे बाला तर है। वला इलाहा गैरुक, तेरे इलावा कोई माबूद नहीं, ना कोई जात परस्तिश के लायक है। ना हो सकती है। अब देखो कैसे कलमात हैं तारीफी है, कि इनको पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद अब पढ़ते हैं हम सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं। तो ये क्या है जो पढ़ी जाती है नमाज में और हर रकात में पढ़ी जाती है और इसके बगैर कहते हैं नमाज ही नहीं होती है जी। बाकी तो सूरत जो मर्जी पढ़ लें लेकिन सूरत फातिहा के बगैर कहते हैं नमाज ही नहीं होती है। तो भाई पहले तो हमने तारीफ की, अल्लाह ताला की सना पेश की है ना अल्लाह ताला को, अब असल दरख्वास्त पेश करनी थी है जी। तो ये सूरत फातिहा क्या है, ये असल दरख्वास्त है और ये असल में बंदे की हम कलामी है परवरदिगार के साथ। इसमें बंदा अल्लाह ताला से बातें करता है, देखो कैसे बातें करता है, हाय हाय अपने कदीमी नमक खार होने का इतराफ करता है। अल्लाह अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह ताला ने हमें दी है तो हमने नमक खार है अल्लाह ताला के, तो हम क्या करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो जहानों का परवरदिगार है, वापसी जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आता है हमदनी अबदी बंदे ने मेरी तारीफ की, अल्लाह भी जवाब दे रहे हैं, बंदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वापसी जवाब आता है हमदनी अबदी, बंदा आगे कहते हैं सरकार आलिया के मेहरबान होने का इकरार करता हूँ अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, बंदा पढ़ता है जी रहमान है अल्लाह तू बड़ा रहीम है, अल्लाह जवाब देते हैं असना अलैया अब्दी बंदे ने मेरी सना बयान की, मेरी तारीफें की बंदे ने, अल्लाह भी जवाब दे रहे होते हैं, बंदा भी जो है फरियादे कर रहा है अदालत आलिया के बाख्तियार होने का इतराफ करता है अल्लाह तू ही तो बाख्तियार है तेरे पास ही तो सब कुछ है मालिक यौमिद्दीन तू मालिक है रोजे जजा का। अल्लाह फरमाते हैं मुज्जदनी आबदी बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है और बंदा आगे से अपने गुलाम होने और आका से मदद लेने का इतराफ कर देता है, कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हाजा बैनी व बैन अब्दी फली अब्दी मा सअला, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरे बंदे ने जो मांगा मिलेगा उसको, अल्लाह वापसी जवाब दे रहे हैं है जी। अब बंदे ने अपना मकसूद बयान कर दिया है जी, अल्लाह मैं क्या चाहता हूँ अल्लाह, मैं गुनाहगार बंदा हूँ अल्लाह, गुनाहों से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, इहदिन सिरातल मुस्तकीम अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा दे, तू नहीं दिखाएगा मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। साथ ही बंदा कहता है अल्लाह वो रास्ता दिखा जो तेरे प्यारों का रास्ता है, तेरे अंबिया का औलिया का, उन्हीं का साथ मुझे अता कर, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया और मुझे जो तेरा गज़ब हुआ उनके साथ जहन्नमियों के साथ न मिला देना, ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, वलद्दाल्लीन और न उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए, अल्लाह मैं बचना चाहता हूँ अल्लाह, जिंदगी का मकसद तो यही है ना कि अल्लाह ताला हमें बचा दे, यही मकसद है ना जिंदगी का कि किसी तरह हम बच जाए। तो ये बंदे ने जब फरियाद की आज भी और इनके सारी की, अल्लाह ने भी उसके साथ वादे कर लिए, ये हम कलामी हुई थी है नहीं? इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो अब जनाब अगला नुक्ता कि सूरह फातिहा जब पढ़ ली और नमाजी की दरख्वास्त भी कबूल हो गई अदालत आलिया में, तो पिछली गलतियां भी माफ कर दी, आइंदा गुनाह न करने की तलकीन की और चाह कि अब कुरान मजीद की तिलावत से दस्तूर अमल भी सुन लो, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस किस में है? कुरान मजीद है ना। अच्छा भाई, तुमने माफी मांग ली, हर चीज कर ली है, अब परवरदिगार चाहते हैं कि जरा मेरा कुरान पढ़ो। ये कुरान मजीद दस्तूर हयात है, जाबता हयात है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आब हयात है। तो लिहाजा बंदे ने खड़े होकर फिर कुरान पढ़ा, आके अमल भी फिर करूंगा ना। अब कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत की बातें, जहन्नम की बातें, अल्लाह की वहदानियत की बातें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बातें है जी, उसमें मसले मसाइल, उसमें फुकहा और सब की बातें, सारी की सारी बातें किसमें है? कुरान मजीद में। जितनी मर्जी तिलावत करते चले, इजाजत है। तुमने अब दरख्वास्त पेश कर दी, अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से बचा लिया, अब जो है पढ़ो कुरान, पढ़ी जाओ तरावियां इंशाल्लाह आने वाली है, महीना रह गया है, और जनाब कारी हजरात खड़े हो जाएंगे और जनाब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद वो कुरान जो पढ़ेंगे तो अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक कर देंगे, सारा का सारा कुरान पढ़ डालेंगे, और हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, है जी। गुनाहों से छुटकारा मिल गया, अब कुरान सुनते रहो, मजे पाओ। अब उसके बाद रुकू में झुकने की क्या हिकमत आ गई इसके बाद? ये सवाल भी आ जाता है जी, देर तो हो रही है, अगर इजाजत हो तो मैं लगा रहा हूँ। तो माशाल्लाह, तो रुकू में झुकना, नमाजी ने जब आइंदा दस्तूर अमल सुना तो फौरन उसे क्या करना चाहिए? सर तस्लीम खम करना चाहिए था, है ना, झुकना चाहिए ना। जो ही उसने कुरान सुन लिया तो अब अमल क्या करना है कि अपनी पीठ सामने कर दे कि अल्लाह जहां बोझ डालना है गुनाह का डाल दे, अल्लाह मियां अब मैं गुनाहगार बंदा हूं, जो कहेगा करूंगा, है जी, मजदूर मजदूरी के लिए हाजिर है, अल्लाह तेरा कुरान सुना है, अमल करूंगा, है जी। तो अपनी पीठ जो है झुका देता है, कमर झुका के खड़ा हो जाता है, जितना बोझ अल्लाह डालना दे डाल दे। अल्लाह भी फरमाते ला युकल्लिफ नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह वो जितना नहीं डालते कि भाई वो जो है कमर ही टूट जाए इसकी, है ना। तो अल्लाह ताला ने रकू इसके बाद बनाया, और रकू में क्या कहता है बंदा? सुभान रब्बियल अजीम, तेरी जात पाक है, तेरी सरकार बड़ी है, वाह मेरे वाला, मैं हाजिर। इशाद होता है, अच्छा हमने गुनाहों की गठड़ी जब तुम्हारे सिर पर थी तुम्हारी कमर से उतार दी है, है जी, कमर से गुनाहों की गठड़ी उतार दी है। जिस वक्त बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, इसके सारे गुनाह बांध कर उसके सर पर रख दिए जाते हैं कि तू गुनाहगार बंदा अल्लाह की हाजिरी में आ गया है, और जब इंसान रुकू में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं, ठीक है ना। सर की चीज पड़ी हो तो रुकू में गया तो गिर गया ना, है जान छुट गई। तो अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमा दी, तो जब गुनाहों का बोझ दूर हो गया और नमाजी रुकू से वापस क्याम की हालत में आता है तो फिर क्या कहता है? समी अल्लाह लिमन हमीदा, है जी, सुन लिया मेरे मौला ने, है जी, जो उसकी जनाब में मैंने अर्ज किया था, तारीफें की उसकी और हर चीज की, अल्लाह मुझे माफी दे दे माफी दे दे। तो क्या हुआ? समी अल्लाह लिमन हमीदा। तो अब ये जब उसने ये कहा तो अगली बात क्या होनी चाहिए? सजदे में पढ़ना चाहिए, है ना। तो अब सजदे की हिकमत सामने आ गई ना। तो लिहाजा नमाजी जब कौमा में गुनाहों के बोझ से सुबह को दोष होगा तो मौला की अनायात हसन ने उसके दिल को एहसान मंदी और एहसास तशक्कुर के जज्बात से भर दिया, बस मोमन शर्त मोहब्बत से अपने महबूब के हकीकी कदमों में जा पड़ा और सजदे में जा पहुंचा, है जी। हदीस मुबारक का मफहूम, सजदा करने वाला रहमान के कदमों पे सर रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कई लोग लंबे सजदे करते हैं, है जी, तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि भाई मैं तो जब लंबा सजदा करता हूँ और सुभान रब्बी अल आला पढ़ता हूँ तो मुझे बस ऐसा लगता है मैंने अल्लाह के कदमों पे सर रखा है। एक और नुकता कि जिस हाल में तुम्हें मौत आएगी तुम उसी हाल में उठाए जाओगे, لہذا جس شخص کو نماز کے سجدے میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کی حالت میں اٹھے گا. بعض لوگوں کو سجدے کی حالت میں بھی موت آتی ہے, کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. ایک اور نقطہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدے میں سر جھکایا ہے جی, اللہ تعالیٰ نے کھانا ان کے منہ تک پہنچایا. آدم علیہ السلام نے اور بنی آدم نے سجدہ کیا نا اللہ تعالیٰ کو, اللہ نے پھر انعام کیا دیا کہ اب کھانے کو ان کے منہ تک پہنچایا. کیسے بھائی؟ جیسے کہ آپ دیکھو جتنے باقی جانور ہیں کوئی ہے جو ایسے ہاتھوں سے کھاتا ہو, منہ مارتے ہیں, پرندے بھی ہیں چونچ مار رہے ہیں, سر کو جھکا رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شیر بھی ہے تو وہ بھی سر جھکا کے کھا رہا ہے, اور انسان کو اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے اور یہ اپنے ہاتھوں سے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے, تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کی وجہ سے اس کے منہ تک پہنچایا, اور جو ہے یہ بتا دیا کہ مومن کیونکہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے لہذا اس کے سر کو یہ شرافت بخشی جاتی ہے کہ یہ دوسرے کسی مقصد کے لیے نہیں جھکے گا, باقی وجہ سے اس کو روک لیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے, جس کو تو مشکل سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے سامنے جو جھکے گا اللہ اس کو غیر کے سامنے نہیں جھکنے دے گا, لہذا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے. ایک اور علمی نقطہ کہ بعض اولیاء جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے, زمین پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. جی سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عذاب میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو ریشہ سیماب, وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. زمانہ تھا کہ لوگ سجدے کیا کرتے تھے, واقعی قلب سے سبحان ربی العلیٰ پڑھتے تھے. آج تو ٹنگے مارتے ہیں, ٹنگے سمجھتے ہیں دی کو دی نہ ملے گی, چونچ مارتے ہیں. ایک اور شاعر اسی مضمون کو کہتا ہے نشان سجود تیری جبین پر ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. ایسے بھی سجدے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کہ وہ زمین پر نشان چھوڑ جاتے ہیں. جی ایسے بھی سجدے کرنے والے گزرے ہیں کہ جہاں انہوں نے سجدہ کیا آج تک وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. کیا سجدہ تھا یہ, اللہ کے ہاں قبول ہو گیا اور وہاں مسجدیں بن گئی. اگر دل غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہو تو سجدہ کے وقت زمین یوں کہتی ہے میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدے کی لذت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان اپنے ظاہر و باطن کو یکسوئی سے سجدہ کرے گا, پورے توجہ کے ساتھ جو سجدہ کرے گا اللہ میرے تن من بدن اور دل و روح نے آپ کو سجدہ کیا ہے, ایسی کیفیت کو پیدا کرے گا. تو یہ کیفیت زمین چون سجدہ کردم یا زمین ادا بر آمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی, اگر تو نے ریائی کے ساتھ تمہیں دکھاوے کے ساتھ سجدہ کیا ہے تو زمین بھی کہتی ہے تو نے میری زمین خراب کر دی ہے. تو بھائی سجدہ جو ہے وہ ایسا کرنا چاہیے کہ واقعی دل و جان سے اور روح کی اور ریشے ریشے سے سجدہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں ایک اصول بتا دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اچھے اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے. اس اصول کی بنا پر جب مومن نے سجدہ کیا سبحان ربی العلیٰ کہہ کر اپنے پروردگار کی عظمتوں کا اقرار کیا تو پروردگار نے مومن پر احسان فرمایا اور وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوگے. اللہ نے بتا دیا تمہیں ہی ہم غالب کریں گے دنیا اور آخرت میں اگر صحیح معنی میں سجدے کرنے والے بن جاؤ گے. सही नमाज पढ़ने वाले बन जाओगे। अब सवाल पैदा होता है यार, ये दो सजदे क्यों हुए? एक सजदा तो चलो कर लिया था, उसके बाद फिर एक और सजदा भी आ गया, इसमें क्या हिकमत थी? जब मोहम्मद ने सजदे में सुभान रब्बियल आला कहा तो हो सकता था कि उसके दिल में ख्याल हो कि मैंने बंदगी का हक अदा कर दिया है जी, लिहाजा अल्लाह ताला ने दो सजदे करवाए ताकि इबादत पर नाज ना पैदा हो जाए, है जी, नाज ना पैदा हो जाए। हाय हाय, अल्लाह ताला को हमारे सजदों की क्या जरूरत थी। दो सजदे करने में फरिश्तों के साथ भी मुशाबियत हुई, वो कैसे जी? जब परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, है जी, तो उन्होंने सजदा किया, इबलीस ने सजदा ना किया। तो जब उसने सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने उसको धिक्कार दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो फरिश्तों ने जब इसका बुरा अंजाम देखा, इसका हशर देखा अपनी आंखों से, तो फौरन दूसरी मरतबा सजदे में गिर गए और अपनी बेकसी और आजी और अल्लाह ताला की जो है किबरियाई और बुलंदी जो है उसका इजहार करने लगे और शुक्र अदा किया कि अल्लाह तू ने हमें सजदे की तौफीक पहले दे दी, किया वरना हमारा अंजाम भी इस इबलीस वाला हो जाता है जी। तो लिहाजा पहला सजदा अतात हुक्म खुदावंदी का था और दूसरा सजदा जो है वो नेमत खुदावंदी से जो है, बल्कि लानत खुदावंदी के बचने पर शुक्र अदा करने पर था, लेकिन हमें शुक्र है कि वो लानत हम पर नहीं बरसती। लिहाजा अल्लाह ताला ने मोमिनीन को भी ये दो सजदे नमाज में ता फरमाए कि जी शुक्र भी अदा करे और अल्लाह की लानत से भी बच गए, इस पर भी शुक्र अदा है जी। एक तो बंदगी की मोमन ने और दूसरा एक अल्लाह की नाराजगी से भी बच गए ना, तो ये दो सजदे हमारे ऊपर आ गए। कहते हैं मोमन जब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाता है तो गोया अपने आप को खाक में मिलाता है और सजदे में पढ़ के कहते हैं सुभान रब्बियल आला, तो परवरदिगार आलम में आपकी शान शान इबादत नहीं कर सका, आपने मुझे खाक से पैदा किया, आप मेरी तारीफों से ज्यादा अजीम है जी। इरशाद होता है, ए बंदे उठ और सारी दुनिया को दिखा कि हमने तुम्हें किस तरह खाक से पैदा किया है जी। सजदे में जब गिरता है पहला सजदा करता है तो फिर अल्लाह हुक्म देते हैं उठ, मोमर कहते हैं अल्लाह अकबर करके उठ बैठता है, अल्लाह तो बड़ा है। इरशाद होता है कि बंदे इस फानी दुनियावी जिंदगी पर मगरूर ना होना, हम तुम्हें दोबारा खाक में मिलाएंगे, हम तुम्हें दोबारा खाक में मिलाएंगे, एक मरतबा खाक में मिलाकर दिखाओ है जी, बस तुम जो है क्या करो दूसरी मरतबा सजदे में गिर जाओ। तो इरशाद होता है कि हम मारने के बाद दोबारा फिर जिंदा करके बिठाएंगे, है जी, अल्लाह फिर भी उठाएंगे। बस मोमन अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाता है, गोया रोज़े महशर अपने रब के सामने खड़ा होता है। इसी मार्फत की बिना पर बाकी अरकान एक एक हैं, मगर सजदा हर रकात में दो है, ठीक है। एक और भी इसमें नुकता है कि आम दस्तूर है कि जिस काम को एक दफा करने में खूब मजा आए तो दूसरी दफा भी तो करने के लिए जाता है ना। जब सजदा एक बार किया था तो फिर अगर एक ही सजदा होता तो दोबारा लुत्फ कैसे लेते, तो दोबारा भी सजदा करने का बेख्तियार जी चाहता है। और अक्सर आपने देखा होगा, आप अगर सही महीने में एक बार सजदा करें ना और आप उठ के बैठे ना, आपका जी चाहते यार मैं फिर दोबारा ही कहता हूँ, बड़ा मजा आया है, इजहार तो जी चाहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मौका दोबारा दिया अल्लाह ताला ने। अब ये जो है जब हम रुकू में जाते थे जी, इसके बाद जलसा करते हैं, और जब हम सज्जे में जाते हैं तो इसके बाद कौमा करते हैं, ये भी तो नमाज का हिस्सा होते हैं ना। तो ये क्या चीजें हैं? कौमा कहते हैं जलसा जो है वो सजदे के बाद, और कौमा जो है रुकू के बाद। ये कौमा कहते हैं रुकू के बाद थोड़ी देर के लिए क्याम की मानत खड़ा होना और फिर सजदे में चला जाना। इसमें हिकमत यह है कि रुकू और सजदे का मजा जुदा जुदा हो जाए। रुकू भी झुकना था और सजदा भी जो है झुकना है। अगर बंदा रुकू से ही सीधा सजदे में चला जाए तो यानी आपने अभी एक टेस्ट लिया था तो उस टेस्ट को लेने के बाद दूसरे टेस्ट के दरमियान जरा थोड़ा सा वक्फा भी जरूरी था, कौमा लगाया आपने है कौमा लगा तो ये कौमा उसमें आ गया। तो लिहाजा रुकू से वापस क़याम की तरफ लौटना और फिर सजदे में दोनों आमाल एक दूसरे से अलग अलग करना, इसमें जो है थोड़ी देर के लिए यानी कि ये फर्क डालना। इसी तरह जो जलसा है वो भी दो सजदों के दरमियान बैठ रहा होता है और इसमें भी दोनों सजदों के दरमियान के मजे को जुदा जुदा करना और वाजे करना, प्रोमिनेंट करना, इससे ये इसका मकसद जाहिर होता है। अब नमाज के एक अमल से दूसरे अमल में मुंतकिल होते वक्त तकबीर कही जाती है, अल्लाह अकबर कहते हैं, ताकि मोमिन की जुबान से बार बार उस हकीकत का इजहार हो कि हक ताला हमारी इबादत से बुलंद बारा है। अल्लाह बहुत बड़े हैं। अब एक सवाल आया कि लंबा कयाम अफजल है या लंबा सजदा अफजल है, ये सवाल आ गया। तो तवील कयाम की फजीलत इसलिए है कि मोमन इसमें कुरान की किराअत करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान जो है इसको जिक्र अज़कार पर फजीलत हासिल। सजदे में हम सुभान रब्बियल आला ये जिक्र है और कयाम के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है, तो लिहाजा जो है हदीस पाक के मुताबिक नमाज में पढ़ने वाले शायन के जो हर शख्स को हर हर्फ के बदले में यानी कि जो कुरान मजीद पढ़ता है कई गुना इसकी नेकियां बढ़ जाती हैं। लिहाजा तवील सजदे की जो है उसकी बनिस्बत क़याम तवील करने की जो है ज्यादा फजीलत है। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ मजे हैं, कभी लंबे सजदे के भी मजे आते हैं और कभी लंबे क़याम के भी मजे आते हैं। इश्क के मुख्तलिफ अंदाज हैं तो बहरहाल मुख्तलिफ अंदाज से इन मजों को लिया जाता है। अब यहाँ एक और बात आ जाती है कि सजदे में जाने की तरतीब क्यों खास है। पहले हम खड़े होते हैं, रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। अच्छा भी तो हो सकता था सजदे में पहले चले जाते हैं और फिर खड़े होते हैं, ये एक जो पैटर्न है ये क्यों बना हुआ है? आप सुने, शरीयत का हुक्म है कि सजदे में जाते वक्त नमाजी पहले अपने घुटने जमीन पर टिकाए, फिर हाथ जमीन पर रखे, फिर पेशानी जमीन से लगाए। बुझा ये बात है ना, एक तरतीब है सजदे में जाते हुए, है ना। बिला उज़र इसके बरखिलाफ करना मकरूह है और जब सजदे से उठता है तो इसके अपोजिट करना यानी सर पहले उठाना फिर हाथ फिर अपने ये ली ज्वाइंट उठाना, इसकी मार्फत यह है कि सजदे में जाना मौत और फना की सूरत है। अपने आप को बंदा फनाहियत में डाल रहा होता है, मौत की शक्ल है, जबकि क़याम में खड़ा होना जिंदगी की सूरत है, वापस लौटाया जा रहा है। बस सजदे में जाते वक्त की तरतीब को पसंद किया गया और क़याम में खड़े होते वक्त जिंदगी की तरतीब को पसंद किया गया ताकि नमाजी के क़याम व सुजूद को उसकी जिंदगी और मौत के साथ जाहिरी बातिनी रिजेम्बलेंस हो जाए। तफसील इसकी यह है कि भाई मौत के वक्त इंसानी रूह पहले जो है वो उसके पाँव और घुटनों से निकलती है, फिर हाथों से, फिर आखिर में उसके सर से निकाली जाती है। जिन लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन करने का मौका मिला हो उनसे अगर आप पूछेंगे तो पहले जो है पल्स खत्म हो जाती है उसके फीट पे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से जो है ना रूह निकलती चली जाती है। गोया पांव से ये रूह निकली और आखिर में सर से निकली, जबकि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह दाखिल की गई तो वो सर की तरफ से डाली गई। अभी पांव में रूह नहीं आई थी, सर में आई थी, जो उठ के बैठने लग गए थे। हाँ जी, जो सीने और हाथों से होती हुई पांव तक पहुंची। बस सजदे में जाते वक्त रूह निकलने की तरतीब और कयाम में खड़े होते वक्त रूह जिस्म में डालने की तरतीब से मुशाबियत है। सजदे में जाना फना है तो कयाम में खड़े होना बका है। ये फना व बका के असबाब जो है ये सूफिया के हाँ बड़े मशहूर हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें हमारी नमाजों को जो है ना सही मायने में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की सच्ची इबादत करने का हमें लुत्फ अता करे। इंशाल्लाह मजमून को अगले जुम्मे भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी कुछ ना कुछ बाकी रहता है, अल्लाह ताला पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।